الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قربانی کیوں کرتے ہیں دعائے عطار یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ قربانی کیوں کرتے ہیں پڑھ یا سن لے اسے ہر سال خوش دلی سے قربانی کرنے کی سعادت عطا فرما اور اس کی قربانی کو اس کے لیے پل صراط کی سواری بنا آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد قربانی حکم خداوندی پر عمل کرنے کے لیے کی جاتی ہے سوال ہم قربانی کیوں کرتے ہیں جواب قربانی کا حکم اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اور یہ چند شرائط کے ساتھ مسلمان پر واجب ہوتی ہے اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اللہ پاک نے قربانی کا حکم دیتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ترجمہ کنز الایمان تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو تو اس حکم خداوندی پر عمل کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں اس موقع پر مدنی مذاکرے میں شریک مفتی صاحب نے فرمایا اس آیت مبارکہ میں بھی قربانی کا ذکر ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین پارہ 8 سورۃ الانعام آیت 162 ترجمہ کنز الایمان تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یہ قربانیاں کیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم یعنی قربانی کرنا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے ایک اور حدیث پاک میں ہے جو قربانی کی وسعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے قربانی کس پر واجب ہے سوال قربانی کرنا کس پر واجب ہے جواب 10 ذو الحجت الحرام کی صبح صادق سے لے کر 12 ذو الحجت الحرام کے غروب آفتاب کے درمیان اگر کوئی مسلمان عاقل بالغ مقیم اور صاحب نصاب ہو اور وہ نصاب اس کے قرض اور ضروریات زندگی میں مستغرق یعنی ڈوبا ہوا نہ ہو تو اس صورت میں قربانی واجب ہوگی کیا مسافر پر قربانی واجب ہے سوال کیا مسافر پر قربانی واجب ہے جواب جو شرعاً مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں قربانی کے جانور کی عمر کا اعتبار ہے یا دانت نکالنے کا سوال کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے جو اپنی قربانی کی عمر پوری کر چکا ہو مگر اس نے دانت نہ نکالے ہوں بکر عید کے موقع پر بیوپاری گاہکوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے اس جانور نے اگرچہ دانت نہیں نکالے مگر یہ اپنی قربانی کی عمر پوری کر چکا ہے تو گاہک وہ جانور خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ دانت نکالنا ضروری ہے اگر وہی جانور بیوپاری آدھی قیمت پر دینے کے لیے تیار ہو جائے تو گاہک اسے خرید لیتے ہیں ان کا ایسا کرنا کیسا جواب جو جانور قربانی کی عمر پوری کر چکے ہوں ان کی قربانی جائز ہے اگرچہ انہوں نے دانت نہ نکالے ہوں قربانی کے جائز ہونے کے لیے اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال گائے کی 2 سال اور بکرا بکری دمبا دمبی और भेड़ की 1 साल होना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर दुंबा या भेड़ का 6 महीने का बच्चा इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। याद रखिए, कुर्बानी जायज़ होने के लिए जानवरों की उम्र पूरी होना ज़रूरी है, न कि दांत निकालना, क्योंकि जो जानवर आज़ाद घूम फिर कर चरते और नोच नोच कर घास खाते हैं, वो मुसलसल दांतों से घास खींचते रहने के सबब अपनी कुर्बानी की उम्र पूरी होने से पहले ही दांत निकाल देते हैं। और जो जानवर बंधे हुए होते हैं वो बसा औकात उम्र पूरी होने के बावजूद दांत नहीं निकाल पाते। जानवरों की उम्र के मामले में लोग व्यापारी पर इसलिए एतमाद नहीं करते कि कसरत से झूठ और धोखा दही के बाइस उनका व्यापारी से एतमाद उठ चुका होता है। बास व्यापारी जानवरों की कटी हुई दुम टेप लगाकर जोड़ देते हैं और जिस रंग के जानवर के बाल होते हैं टेप पर उसी तरह का रंग लगा देते हैं, जिसके बाइस खरीदार को ये मालूम नहीं हो पाता कि जानवर की दुम कटी हुई है। और फिर जब वो बेचारा उसे घर ले जाकर दुम से पकड़ता है तो दुम निकलकर उसके हाथ में आ जाती है। इसी तरह बाज व्यापारी जानवरों के दांत दिखाते हुए भी धोखा दही से काम लेते हैं। अगरचे सब व्यापारी धोखेबाज नहीं होते, मगर लोग ईमानदार व्यापारी पर भी इसलिए एतमाद नहीं करते कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। अगर व्यापारी बाशरा और नेक आदमी है और वो कहता है कि जानवर की उम्र पूरी है, गाहक को इस पर एतमाद है कि वो जानवर की उम्र बताने में झूठ नहीं बोल रहा, तो इस सूरत में अगर गाहक ने उससे जानवर खरीद कर कुर्बानी कर ली तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, अगरचे दांत ना निकले हों। बेहतर यह है कि कुर्बानी का जानवर चाहे वो गाय हो या बकरा, 4 दांत का होना चाहिए। बकरा अगर 4 दांत का हो तो उसका गोश्त उम्दा होता है, मगर हमारे यहाँ 2 दांत की रस्म चल पड़ी है। जानवर खरीदने वाले भी 2 दांत का मुतालबा करते हैं और व्यापारी भी 2 दांत की सदाएं लगाते हैं। बसा औकात जानवर 8 दांत यानी बड़ी उम्र का होता है, मगर व्यापारी खरीदार को सिर्फ 2 दांत नुमाया तौर पर दिखाते हैं और बकिया दांत अपनी उंगलियों से छुपा लेते हैं और फिर फौरन जानवर का मुंह बंद कर देते हैं। रही बात ये कि जिस जानवर के कम उम्री की वजह से दांत नहीं निकले होते, लोग उसे आधी कीमत में खरीद लेते हैं, तो ये आधी कीमत पर खरीदने वाले शायद गोश फरोश होते होंगे जो ऐसे जानवरों को कुर्बानी के लिए नहीं बल्कि ज़बह करके उनका गोश्त बेचने के लिए खरीद लेते होंगे। जानवर 2 दांत का है या ज्यादा का, ये पहचान कैसे हो? सवाल, जानवर 2 दांत का है या ज्यादा का, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? जवाब, जानवर 2 दांत का है या ज्यादा का, इसकी पहचान ये है कि जो दांत अच्छी तरह नहीं निकले होते वो सारे छोटे से एक लाइन में सफेदी की तरह नजर आते हैं और जो दांत निकल चुके होते हैं वो उस सफेदी से थोड़ा हटकर उभरी हुई जगह से निकलते हैं और चौड़े होते हैं और उन पर कुछ पीलाहट सी होती है। अगर जानवर 8 दांत का बिल्कुल ज़ईफ़ है तो उसके 8ों दांत एक ही लाइन में नज़र आएंगे और उन पर पीलाहट भी दिखाई देगी। बहरहाल, जानवर के दांतों की पहचान हर एक नहीं कर सकता, लिहाजा जानवर खरीदते वक्त तजर्बेकार आदमी का साथ होना बहुत मुफीद है। बड़े जानवरों को छोटी गाड़ियों में घुसाकर लाना कैसा? सवाल, कुर्बानी के जानवरों को मंडी से खरीद कर घर लाने के लिए गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। बाज लोग पैसे बचाने के लिए बड़े जानवरों को भी छोटी गाड़ियों में जबरदस्ती घुसाकर लिटाकर और रस्सियों से बांधकर लाते हैं, जिसकी वजह से जानवरों को बहुत तकलीफ होती है और बसा औकात वो शदीद जख्मी भी हो जाते हैं। इस बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। जवाब, जिस तरह इंसान को तकलीफ दे चीज़ों से अजियत पहुंचती है और वो अपने आप को उनसे बचाने की कोशिश करता है, जाहिर है इसी तरह जानवरों को भी तकलीफ दे चीज़ों से अजियत होती है। چند پیسوں کی خاطر اس طرح بڑے جانوروں کو چھوٹی گاڑیوں میں زبردستی گھسا کر لٹا کر اور رسیوں سے باندھ کر لانا بلا وجہ جانوروں کو ایذا دینا اور ان پر ظلم کرنا ہے۔ جانور پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی سخت تر ہے، کیونکہ مسلمان تو مقابلہ کرے گا، عدالت میں جا کر کیس کر دے گا، اس کے علاوہ اور بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ بے زبان جانور کس کے آگے فریاد کرے گا؟ جانور پر ظلم کرنا ذمی کافر پر، اب دنیا میں سب کافر حربی ہیں، ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے، اور ذمی پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی برا ہے، کیونکہ جانور کا معین و مددگار اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں۔ یاد رکھیے، مظلوم جانور بلکہ مظلوم کافر کی بھی بد دعا قبول ہوتی ہے، جنہوں نے ایسا کیا وہ آئندہ ہرگز اس طرح کے انداز اختیار نہ کریں۔ کون سے دن قربانی کرنا افضل ہے؟ سوال، عید کے کون سے دن قربانی کرنا افضل ہے؟ جواب، عید کے تینوں دن قربانی کرنا جائز ہے، البتہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ عید کے پہلے دن عموماً قصاب زیادہ پیسے لیتے ہیں، تو بعض لوگ تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے افضل عمل کو چھوڑ کر عید کے دوسرے یا تیسرے دن قربانی کرتے ہیں۔ یوں چند پیسوں کی خاطر اتنا مہنگا جانور لانے کے باوجود پہلے دن قربانی کرنے کی فضیلت پانے سے خود کو محروم کر دیتے ہیں۔ پہلے دن قصاب کا زیادہ رقم لینا اگرچہ نفس پر گراں گزرتا ہے، مگر ہمیں اپنا یوں ذہن بنانا چاہیے کہ جو نیک عمل نفس پر جتنا زیادہ گراں گزرتا ہے، اس کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، عید الاضحیٰ کے دن جانور ذبح کرنے سے افضل کوئی عمل نہیں ہے، لہذا کوئی مجبوری نہ ہو تو پہلے دن ہی قربانی کی جائے، اگرچہ کچھ رقم زیادہ خرچ ہوگی، لیکن اس کو بھی نقصان نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے عوض آخرت میں ملنے والے عظیم ثواب پر نظر رکھی جائے۔ اگر کسی کے گھر میں دوسرے یا تیسرے دن دعوت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ پہلے دن قربانی نہیں کرتا، تو اسے چاہیے کہ پہلے دن قربانی کر کے اس کا گوشت فریج میں رکھ دے اور اگلے دن دعوت میں استعمال کر لے، کیونکہ ایک دو دن میں گوشت کے ذائقے میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ فقط لذت نفس کے لیے پہلے دن قربانی کے عظیم ثواب سے محروم ہو جانا دانش مندی نہیں بلکہ محرومی ہے۔ جس طرح تاجر مال کے نفع پر نظر رکھتا ہے، اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مال کے نفع سے زیادہ نیکیوں کے نفع پر نظر رکھے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا رہے۔ شکنجے میں جکڑ کر جانور ذبح کرنا کیسا؟ سوال، یورپین ممالک میں چھوٹے جانور کو ذبح کرنے کے لیے مخصوص شکنجے میں جکڑا جاتا ہے، تاکہ رسیوں سے باندھنے اور پکڑنے کی مشقت سے بچا جا سکے۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب، بکرے اور دمبے وغیرہ کو مخصوص شکنجے میں جکڑ کر ذبح کرنے میں اور تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک سنت ترک ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ ذبح کرنے والا اپنا دایاں یعنی سیدھا پاؤں جانور کی گردن کے دائیں یعنی سیدھے حصے یعنی گردن کے قریب پہلو پر رکھے اور ذبح کرے۔ البتہ اس شکنجے کے ذریعے جکڑنے میں ایک فائدہ بھی ہے کہ جانور کئی غیر ضروری تکالیف سے بچ جاتا ہے، مثلا بعض لوگ بکرے کو اٹھا کر پٹکتے ہیں یا پتھریلی زمین پر گراتے ہیں، جو یقیناً بلا وجہ کی ایزا ہے، لیکن اس مخصوص شکنجے کے ذریعے لٹانے میں یہ دونوں تکالیف نہیں ہوں گی۔ نیز اس شکنجے کی ہیئت ایسی ہے کہ جانور کو لٹا کر پیٹ سے جکڑ لیا جاتا ہے اور پاؤں آزاد ہوتے ہیں، تو یہ طبی لحاظ سے بھی اچھا ہے، اس لیے کہ جانور جتنا زیادہ ہاتھ پاؤں مارے گا اتنا ہی مضر صحت خون بہ جائے گا۔ بہرحال شکنجے میں کس کر ذبح کریں یا رسیوں سے باندھ کر، جانور کو بے جا تکلیف دینے کی ہرگز اجازت نہیں۔ جو لوگ بکرے کی گردن چٹخا دیتے ہیں یا بڑے جانور کی چھرا گھونپ کر دل کی رگے کاٹ دیتے ہیں या ज़बह करते हुए हड्डी पर छुरी मारते हैं तो उन्हें इससे बचना ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता मरने के बाद यही जानवर मुसल्लत कर दिया गया तो फिर क्या बनेगा? कुर्बानी के जानवर के बाल और ऊन वगैरह काटना कैसा? सवाल, कुर्बानी के बाद जानवरों के जिस्म पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। उन्हें ज़बह करते वक्त अगर दुश्वारी हो रही हो तो क्या इन बालों को काट सकते हैं? अगर किसी ने वो बाल काट दिए तो उन बालों का क्या हुक्म है? जवाब, कुर्बानी के जानवर के बाल और ऊन वगैरह काटना मकरूह है। अगर किसी ने बाल या ऊन वगैरह काट दी तो इन चीज़ों को ना तो वो अपने इस्तेमाल में ला सकता है और ना ही किसी गनी को दे सकता है, बल्कि इन बालों और ऊन वगैरह को किसी शरई फकीर पर सदका करना होगा। रही बात ज़बह करते वक्त दुश्वारी पेश आने की, तो उसके लिए पूरे बदन के बाल काटना तो दूर की बात, गले के बाल काटने की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि गले पर पानी वगैरह डालकर जगह बनाई जा सकती है। बेवुजू या बेनमाजी का ज़बीहा। सवाल, कसाब उमूमन बेवुजू, बेनमाजी और दाढ़ी मुंडे होते हैं, तो क्या इनसे जानवर ज़बह करवाना दुरुस्त है? नीज़ जानवर को ज़बह करने के चंद मदनी फूल भी बयान फरमा दीजिए। जवाब, जानवर ज़बह करने के लिए बावजू, नमाजी और दाढ़ी वाला होना शर्त नहीं। लिहाजा अगर दाढ़ी मुंडे, बेवजू और बेनमाजी शख्स ने भी जानवर ज़बह किया तब भी जानवर हलाल हो जाएगा। ज़ाबेह यानी ज़बह करने वाले का मर्द होना भी शर्त नहीं, औरत या समझदार बच्चा भी ज़बह कर सकते हैं। अलबत्ता जो भी ज़बह करे उसे ज़बह के वक्त अल्लाह का नाम लेना ज़रूरी है। अगर किसी ने जानबूझकर अल्लाह का नाम छोड़ दिया, मसलन दो आदमी मिलकर ज़बह कर रहे थे, एक ने ये सोचकर अल्लाह का नाम ना लिया कि दूसरे ने कह दिया है, मेरा कहना ज़रूरी नहीं, तो जानवर मुर्दार हो जाएगा। ज़बह के वक्त बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर के अल्फाज कहना बेहतर है, शर्त नहीं। लिहाजा अगर किसी ने फ़कत लफ्ज़ अल्लाह कहकर छुरी चला दी तब भी जानवर हलाल हो जाएगा। अगर भूलने के सबब अल्लाह का नाम ना लिया तब भी जानवर हलाल हो जाएगा। इज्तिमाई कुर्बानी की एहतियातें। सवाल, इज्तिमाई कुर्बानी करने वालों पर क्या क्या शरई जिम्मेदारियाँ बनती हैं? जवाब, इज्तिमाई कुर्बानी के मसाइल बहुत पेचीदा और मुश्किल हैं, लिहाजा इज्तिमाई कुर्बानी करने वालों के लिए लाजिम है कि वो इससे मुतालिका ज़रूरी मसाइल सीखें या फिर उलमाए किराम की मुकम्मल रहनुमाई में ही कुर्बानी करें। बदकिस्मती से लोगों ने इज्तिमाई कुर्बानी को एक कारोबार बना लिया है। बाज़ इदारे भी उलमाए किराम की रहनुमाई लिए बगैर इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं और खुल्लम खुल्ला गलतियां करके लोगों की कुर्बानियां ज़ाया कर बैठते होंगे। हर एक को अदाब आखिरत से डरना चाहिए और शरई तकाजे पूरे होने की सूरत में ही इज्तिमाई कुर्बानी में हाथ डालना चाहिए। आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी में इज्तिमाई कुर्बानी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की मुकम्मल रहनुमाई में ही होती है। मुल्क और बैरून मुल्क इज्तिमाई कुर्बानी का इरादा रखने वाले जिम्मेदारान की पहले तरबियत होती है, फिर तरबियती नशिस्त में शिरकत करने वालों का इम्तिहान होता है और जो इम्तिहान में कामयाबी हासिल करते हैं तो उन्हें ही मदनी मरकज़ की तरफ से इज्तिमाई कुर्बानी की इजाज़त मिलती है। नीज़ दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तरफ से इज्तिमाई कुर्बानी के मदनी फूल के नाम से एक रिसाला भी शाया किया जा चुका है। उधार लेकर कुर्बानी करना कैसा? सवाल, अगर किसी के पास पैसे ना हो तो क्या वो उधार लेकर कुर्बानी कर सकता है? जवाब, अगर कुर्बानी वाजिब है और पैसे छुट्टे नहीं हैं, कारोबार में लगे हुए हैं या कोई माल खरीदा हुआ है जिसे बेचना नहीं चाहते, तो अब अगर किसी से पैसे उधार लेकर कुर्बानी कर ली तो हर्ज नहीं है। अलबत्ता अगर कुर्बानी वाजिब नहीं है तो जाहिर है उधार लेकर कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कुर्बानी की तो सवाब मिलेगा। मगर ऐसा करना बड़ा रिस्क है कि फिर कर्जा उतरेगा नहीं और यूं लड़ाई झगड़ों के मसाइल भी हो सकते हैं। लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि अगर कुर्बानी वाजिब ना हो तो सिर्फ कुर्बानी करने के लिए कर्जा ना लिया जाए। मुहर्रमुल हराम में कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं? सवाल, क्या कुर्बानी का गोश्त ईद उल अधा गुजरने के बाद भी खाया जा सकता है? नीज बाज लोग कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ जाए तो घर में गोश्त नहीं पकाना चाहिए और कुर्बानी का गोश्त भी यकुम मुहर्रमुल हराम से पहले पहले ख़त्म कर लेना चाहिए। आप इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए। जवाब, कुर्बानी का गोश्त अगर कोई साल भर तक खाना चाहे तो खा सकता है, ये जायज़ है। मुहर्रमुल हराम में भी कुर्बानी का गोश्त और उसके अलावा जानवर ज़िबाह करके उसका गोश्त भी खाया जा सकता है। कुर्बानी के जानवर के गोश्त के तीन हिस्से करना। सवाल, कुर्बानी के जानवर के गोश्त के तीन हिस्से किए जाते हैं, क्या शरीयत में इसकी कोई दलील है? जवाब, बाहर शरीयत के 15वें हिस्से में कुर्बानी के मसाइल लिखे हुए हैं। इसमें कुर्बानी के जानवर के गोश्त के तीन हिस्से करने को मुस्तहब लिखा है। मसलन बकरा है तो उसके तीन हिस्से कर लिए जाएं। एक हिस्सा कुर्बानी करने वाला अपने इस्तेमाल में रखे, एक हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम कर दे और एक हिस्सा गरीबों में बांट दे तो ये मुस्तहब है। अगर पूरा बकरा खुद रख लिया या पूरा बकरा बांट दिया या पूरा बकरा एक साथ किसी को उठाकर दे दिया तो ये सब सूरतें भी जायज़ हैं। कुर्बानी किस पर वाजिब है? सवाल, घर में दो कमाने वाले हैं जो तकरीबन 20,000 तक कमाते हैं, क्या उन पर कुर्बानी वाजिब होगी? जवाब, 20, 30, 20, 30 हज़ार कमाने का मसला नहीं है। इस तरह तो लोग 1 लाख भी कमाते होंगे और पूरी की पूरी रकम खर्च हो जाती होगी। कोई 10 हज़ार में गुजारा कर लेता होगा और किसी का 10 लाख में भी गुजारा मुश्किल से होता होगा। किसी के पास आज का खाना होगा तो कल का नहीं होगा, कल का होगा तो परसों का नहीं होगा। लिहाजा कितना कमाता है ये बुनियाद नहीं है, बल्कि बुनियाद ये है कि 10, 10 ज़ुल्हिज्जतिल हराम की सुबह सादिक से लेकर 12, 12 ज़ुल्हिज्जतिल हराम के ग़ुरूब आफ्ताब तक के वक्त में जो गनी हो, यानी ज़रूरियात के अलावा उसके पास निसाब के बराबर रकम वग़ैरह मौजूद हो और कर्ज में घिरा हुआ भी ना हो तो कुर्बानी वाजिब होगी। कुर्बानी का निसाब ये है कि 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो या 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम हो या बेचने का इतना सामान हो जो 52.5 तोला चांदी की रकम को पहुंच जाए या घर में ज़रूरत के अलावा इतना सामान रखा है जो 52.5 तोला चांदी की रकम को पहुंच जाता है या ये सब मिलाकर 52.5 तोला चांदी की रकम को पहुंच जाएं तो इस सूरत में कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। नंबर टू, ये ज़रूर नहीं कि 10वीं ही को कुर्बानी कर डाले। इसके लिए गुंजाइश है कि पूरे वक्त में जब चाहे करे। लिहाजा अगर इब्तिदाए वक्त में 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह उसका अहल ना था, वजूब के शराइत नहीं पाए जाते थे और आखिर वक्त में यानी 12 ज़ुल्हिज्जा को ग़ुरूब आफ्ताब से पहले अहल हो गया यानी वजूब के शराइत पाए गए तो उस पर वाजिब हो गई। और अगर इब्तिदाए वक्त में वाजिब थी और अभी कुर्बानी की नहीं और आखिर वक्त में शराइत जाते रहे तो कुर्बानी वाजिब ना रही। कुर्बानी के जानवर की कीमत बताना मुनासिब है या खामोशी इख्तियार करना? सवाल, जब हम कुर्बानी के लिए कोई जानवर मसलन गाय या बकरा खरीद कर लाते हैं तो अक्सर लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं कितने का लाए हो। ऐसी सूरत में कीमत बताना मुनासिब है या खामोशी इख्तियार करना, क्योंकि कीमत बताने में अपनी बड़ाई का पहलू भी निकलता है कि मैं तो 75,000 यानी 75,000 का लाया या मैं तो 2 लाख 2 लैक्स का लाया वगैरह। जवाब, ज़ाहिर है कि अगर कोई जानवर की कीमत पूछेगा और आप उसे कहेंगे कि मैं नहीं बताता, तो उसका दिल टूटेगा और उसे बुरा लगेगा। इसलिए कोई पूछे तो कीमत बता दीजिए। आपको भी तो जानवर लेकर घूमने का शौक़ है। जब आप अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं, जानवर को लाकर अपने दरवाजे के आगे बांध रहे हैं, इसे फूलों के गजरे और हार डाल रहे हैं और उसे सजा कर रख रहे हैं, तो जब इतनी नुमाइश आप खुद करवा ही रहे हैं, तो फिर लोग पूछेंगे ही कि कितने का लिया है। अगर आप जानवर की नुमाइश ना करें और उसे छुपा कर रखें, तो इतने लोगों को पता नहीं चलेगा और फिर कम लोग पूछेंगे, या फिर ये पूछेंगे कि आपने कुर्बानी के लिए जानवर लिया है या नहीं। अगर आप हाँ बोलेंगे तो पूछेंगे कितने में आया, और अगर बोलेंगे अभी तक नहीं लिया तो पूछेंगे कितने तक लेने का इरादा है। बहरहाल आवाम ने पूछना ही है। अब ये पूछना बाज़ औक़ात फजूल होता है और बाज़ औक़ात फजूल नहीं भी होता। जैसा कि कोई इसलिए पूछ रहा है ताकि उसे ये पता चल जाए कि आजकल जानवर का क्या भाव चल रहा है और इस तरह का जानवर कितने का मिलता है, क्योंकि उसने भी जानवर लेने के लिए मंडी जाना है, तो ये अच्छी नीयत से पूछना है। और अगर वैसे ही पूछता है जैसा कि लोग तजस्सुस के तौर पर पूछते हैं, तो ये फजूल पूछना हुआ और फजूल बातों से बचना अच्छा है। लेकिन ये पूछना अब भी गुनाह नहीं है। लिहाजा अगर किसी ने आपसे जानवर का भाव पूछ लिया, तो आप उसका दिल खुश करने की नीयत से उसे सही सही बता दीजिए, उसका दिल खुश हो जाएगा। नहीं बताएंगे तो उसका दिल टूटेगा। अलबत्ता पूछने वालों को भी चाहिए कि वो बिला ज़रूरत ना पूछे। किस जानवर की कुर्बानी बाड़ी से फजीलत है? सवाल। मैंने दो दुम्बे पाले थे और मेरी नीयत ये थी कि मैं इनको बेचकर बड़ा जानवर ख़रीदूँगा, लेकिन अब मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं इनको ही ज़बह कर दूँ। आप मेरी रहनुमाई कीजिए कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ मेरे लिए बेहतर है। जवाब। कुर्बानी के जानवर की नीयत के कुछ मसाइल यानी शरई अहकाम हैं। गरीब के लिए अलग मसला है और मालदार के लिए अलग। अगर उन जानवरों की कुर्बानी की नीयत नहीं की थी, तो उन्हें बेचने में हर्ज नहीं। आपकी मर्ज़ी है इनको बेचकर बड़ा जानवर लें या ना लें। हाँ, इसमें बेहतर क्या है, तो इस हवाले से अर्ज़ है कि बंदा जो जानवर खुद पालता है, उससे उनसियत होती है, बल्कि बाद औक़ात जानवर से औलाद की तरह प्यार हो जाता है। इसे ज़बह करना नफ्स पर घिरा गुजरता है और दिल पर एक सदमे की कैफियत होती है। यूं इसी पालतू जानवर को ज़बह करने में ज़्यादा फजीलत नज़र आ रही है। अगर इसे बेच दिया जाएगा, तो ये कैफियत नहीं होगी कि नज़रों से ओझल हो गया, अब कटे या कुछ भी हो, इतना महसूस नहीं होगा। नीज़ इसको बेचकर दूसरा जानवर लिया जाए, तो उससे ज़्यादा उनसियत और प्यार नहीं होगा, और उसको काटने से नफ्स पर इतना बोझ भी नहीं होगा। लिहाजा जो जानवर खुद पाला है, इसी को ज़बह करे। फौतशुदा वालिदैन के नाम की कुर्बानी करने का हुक्म। सवाल। अगर वालिदैन का इंतकाल हो चुका हो और उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी कुर्बानी ना की हो, तो क्या औलाद उनके नाम की कुर्बानी कर सकती है? जवाब। जी हाँ, ईसाले सवाब के लिए कुर्बानी हो सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं। नीज़ वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करनी चाहिए, ये अच्छी बात है। वालिदैन ज़िंदगी में कुर्बानी करते थे या नहीं, या 100-100 बकरे ज़िंदगी में ज़बह करते थे, तब भी ईसाले सवाब के लिए कुर्बानी करने में हर्ज नहीं। नीज़ जिंदा के ईसाले सवाब के लिए भी कुर्बानी हो सकती है। क्या कुर्बानी के जानवर को नहलाया जा सकता है? सवाल। क्या कुर्बानी के जानवर को नहलाया जा सकता है? जवाब। जी हाँ, कुर्बानी के जानवर को नहलाया जा सकता है, जबकि ज़रूरत हो। क्या कुर्बानी की भी कज़ा होती है? सवाल। एक साल की कुर्बानी रह जाए, तो क्या ये कुर्बानी दूसरे साल कर सकते हैं? जैसे इस मर्तबा मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो कुर्बानी मेरे लिए मुआफ़ है या करना होगी? जवाब, कुर्बानी के दिन गुज़र गए और वाजिब होने की सूरत में कुर्बानी नहीं की, ना जानवर और उसकी कीमत सदका की, यहाँ तक कि दूसरी बकरा ईद आ गई और अब ये चाहता है कि गुज़िश्ता साल की कुर्बानी की कज़ा इस साल कर ले, तो ये नहीं हो सकता, बल्कि अब भी वही हुक्म है कि जानवर या उसकी कीमत सदका करे। कुर्बानी वाजिब हो मगर रकम ना हो तो क्या करें? सवाल, अगर कुर्बानी की शराइत पाई जाएं लेकिन पैसे ना हों, या कुर्बानी वाजिब ही ना हो, तो क्या फिर भी कुर्बानी का हुक्म होगा? जवाब, अगर कुर्बानी वाजिब हो मगर पैसे ना हों तो उधार लेकर भी कुर्बानी कर सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ बेचकर रकम हासिल कर ले जिससे जानवर ख़रीद सके। याद रखिए, कुर्बानी के लिए ज़रूरी नहीं कि 2.5 लाख वाला जानवर ही लाया जाए, बल्कि हिस्सा भी डाला जा सकता है कि वो ज़्यादा महंगा नहीं होता। बहरहाल, कुर्बानी वाजिब हो तो करना ज़रूरी है, अगर जान बूझ कर ना की तो बंदा गुनाहगार होगा। हाँ, अगर कुर्बानी वाजिब ही नहीं थी और उसके वजूब की शराइत भी नहीं पाई गई थी, इस वजह से कुर्बानी ना की, तो ये कोई गुनाह का काम नहीं है, क्योंकि कुर्बानी वाजिब ही नहीं थी। कुर्बानी के जानवर के गले में घंटी और पाँव में घुंघरू बांधने का हुक्म। सवाल, कुर्बानी के जानवर के गले में घंटी और पाँव में घुंघरू बांधना कैसा है? जवाब, कुर्बानी का जानवर हो या बग़ैर कुर्बानी का, उसके गले में घंटी और पाँव में घुंघरू बांधना अगर बग़ैर किसी ज़रूरत के हो तो मकरूह तंजीही यानी नापसंदीदा है। जानवर के गले में घंटी या पाँव में घुंघरू बांधने से मुतालिक दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का बड़ा प्यारा और तहकीकी फतवा यह है कि जानवरों की गर्दन में घंटी या पाँव में घुंघरू बांधने से अगर कोई मनफात यानी फ़ायदा है तो दारुल इस्लाम में बिला कराहत जायज़, और अगर कोई मनफात नहीं तो मकरूह तंजीही यानी नापसंदीदा है, मगर जायज़ अब भी है। याद रहे, कुर्बानियों की रौनकें दारुल इस्लाम में होती हैं, तो ये मसला भी दारुल इस्लाम के मुतालिक है, जबकि दारुल हर्ब की अलग सूरतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान दारुल इस्लाम है और इसके अलावा भी बेशुमार मुमालिक दारुल इस्लाम हैं। अगरचे उनमें भारी तादाद कुफार की होती है, मगर वो दारुल इस्लाम की तारीफ में आते हैं। बहरहाल, हमारे यहाँ जानवरों के गले में जो घंटी बांधी जाती है वो जायज़ है, और मनफात की नीयत ना होने की सूरत में मकरूह तंजीही, और अगर मनफात की नीयत है तो मकरूह तंजीही भी नहीं है। मसलन, इस नीयत से जानवर के गले में घंटी बांधी कि सफ़र में घंटी की आवाज़ जानवर की चुस्ती बढ़ाएगी और वो जल्दी भागेगा, तो इस फ़ायदे को हासिल करने के लिए घंटी बांधना मकरूह नहीं है। इसी तरह, अगर इसलिए जानवरों के गले में घंटी बांधी कि भेड़िया वगैरह जो जानवर हमला करने आएगा और वो घंटी की आवाज़ से भागेगा और यूं जानवरों की हिफाजत होगी, तो ये भी एक दुरुस्त नीयत है। यूं ही अगर इसलिए घंटी बांधी कि ये नींद दूर करती है और उससे सफ़र में जानवर की नींद भी दूर होगी, जो इस पर सवार है उसकी भी नींद दूर होगी, तो इस नीयत से भी घंटी बांधी जा सकती है। जानवरों के गले में घंटी और पाँव में घुंघरू बांधने के फवाइद। जानवरों के गले में घंटी या पाँव में घुंघरू बांधकर दीगर फवाइद भी हासिल किए जा सकते हैं। मसलन, जानवर गुम हो गया या रस्सी तोड़कर भागा तो पता चल जाएगा कि जानवर भागा है और कहाँ पहुँचा है, या फिर चोरों का खौफ है कि जानवर को चोर ले जाएगा, तो जानवर के चलने से घंटी की आवाज़ आएगी जिसके बाइस सोए हुए अफराद जागकर चोर को पकड़ लेंगे और अपने जानवर को बचा सकेंगे। तो इन सब फवाइद को पाने के लिए जानवर के गले में घंटी और पाँव में घुंघरू बांधना जायज़ है। कम उम्र फरबा जानवरों की कुर्बानी का हुक्म। सवाल, अगर बड़ा जानवर 1.5 साल का हो मगर दूर से देखने में 2 साल का लगे, तो क्या उसकी कुर्बानी हो जाएगी? जवाब, बड़े जानवर गाय भैंस की उम्र 2 साल होना ज़रूरी है। अगर 2 साल में 1 दिन भी कम होगा तो कुर्बानी नहीं होगी। अलबत्ता दुम्बा, दुम्बी या भेड़, जिसको अंग्रेज़ी में शीप बोलते हैं, ये अगर 6 महीने का बच्चा है और दूर से देखने में साल भर का मालूम होता है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, मगर बकरे और बकरी में ऐसा नहीं होगा। ये रियायत सिर्फ शीप में है और ये भी सिर्फ उस वक्त है जब 6, 7 या 8 माह का बच्चा इतना फरबा और जानदार हो कि साल भर का लगे, वरना उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। यानी अब चाहे 6, 7 या 8 माह का हो मगर कमज़ोर हो और बच्चा ही लगता हो, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अलबत्ता पूरे साल भर का होने के बाद भी बच्चा लगता हो तो कोई हर्ज नहीं, कुर्बानी हो जाएगी, बशर्त ये कि उसमें कोई और नुक्स ना हो। जितने अफराद पर कुर्बानी वाजिब हो उन सबको कुर्बानी करना होगी। सवाल, घर में 6 अफराद हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब है, अगर उन सब की तरफ से 2 या 3 कुर्बानियां कर दी जाएं तो क्या काफ़ी होंगी या 6 कुर्बानियां ही करना होंगी? जवाब, 6 कुर्बानियां करना होंगी। बाज़ लोग पूरे घर की तरफ से सिर्फ 1 बकरा कुर्बान कर देते हैं, इस तरह किसी की भी कुर्बानी नहीं होती। 1 बकरे में 1 से ज़्यादा हिस्से नहीं हो सकते। ऐसे मौके पर बड़ा जानवर ले लिया जाए तो वो 7 अफराद की तरफ से कुर्बान किया जा सकता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शख्स के पास जानवर हो और वो उसे ज़बह करने का इरादा रखता हो तो ऐसा शख्स ज़िलहिज्जा का चांद नज़र आने के बाद अपने बाल और नाखून ना काटे जब तक कुर्बानी ना कर ले। आला हज़रत रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, ये हुक्म सिर्फ इस्तेहबाबी है, करे तो बेहतर है, ना करे तो मुजायका नहीं। अगर किसी शख्स ने 31 दिन से किसी उज़र के सबब, ख्वा बिला उज़र नाखून ना तराशे हों कि ज़िलहिज्जा का चांद हो गया, तो वो अगरचे कुर्बानी का इरादा रखता हो इस मुस्तहब पर अमल नहीं कर सकता, क्योंकि अब 10वीं तक रखेगा तो नाखून तरशवाए हुए 41वां दिन हो जाएगा और 40 दिन से ज़्यादा ना बनवाना गुनाह है, फ़ेले मुस्तहब के लिए गुनाह नहीं कर सकता।